नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के प्रयास से संबंधित आरोपों सहित विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत के लिए नई दिल्ली में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर महत्वाकांक्षी अमेरिकी भारत पहल में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 4 दिसंबर को नई दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि ICET अमेरिका भारत साझेदारी में एक प्रमुख मील का पत्थर है, जिसे रणनीतिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। हमास के खिलाफ जंग खत्म होने के बाद इसराइल गाजा पट्टी में बफर जोन बनाना चाहता है। उसने ये योजना अमेरिका और अरब देशों के साथ साझा भी की है। बफर जोन के जरिए इसराइल की कोशिश हमास को एक खास इलाके तक सीमित रखना और उसकी हर हरकत पर नजर रखना होगी। गाजा पट्टी सिर्फ 40 किलोमीटर लंबी और करीब 12 किलोमीटर चौड़ी जगह है और यहाँ की आबादी तकरीबन 23 लाख है। अगर यहाँ इसराइल बफर जोन बनाता है तो ये जगह और तंग हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अरब देशों को बफर जोन बनाने की जानकारी दी है। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ उसके राजनयिक संबंध हैं और इन दोनों ही देशों के साथ उसने योजना को साझा किया है। इसराइल के एक अफसर ने कहा, गाजा और इसराइल की सीमा पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये बफर जोन बनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमास आतंकी इसराइल में घुसकर जमीनी हमले नहीं कर सकेंगे। हवाई हमले रोकने के लिए इसराइल के पास पहले ही टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसराइल की इस योजना पर अब तक किसी अरब देश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यमन में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा 3 पोत पर मिसाइल हमले किए जाने के एक दिन बाद अमेरिका ने कहा कि वो लाल सागर में वाणिज्यिक पोतों की सुरक्षा के लिए एक नौसेना कार्यबल की स्थापना कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए ऐसे कदमों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताते हुए सोमवार को कहा कि अमेरिका पोतों की सुरक्षा के लिए नौसेना कार्यबल के गठन को लेकर सहयोगी देशों के साथ सक्रियता से वार्ता कर रहा है, हालांकि इसे अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से 3 वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया, जबकि एक अमेरिकी युद्धपोत ने आत्मरक्षा में 3 ड्रोन को मार गिराया। सुलिवन ने संवाददाताओं से कहा, हम एक समुद्री कार्यबल के बारे में अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका के साथ साथ साझेदार देशों के जहाजों को भी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया जाएगा। इंडोनेशियाई बचाव कर्मियों ने माउंट मरापी में सोमवार को फिर से हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 12 लापता पर्वतारोहियों की तलाश रोक दी है। अधिकारियों ने बताया कि दोबारा हुए विस्फोट से आसमान में 800 मीटर तक राख की मोटी परत फैल गई। वेस्ट सुमात्रा की खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख अब्दुल मलिक ने बताया कि इससे पहले 11 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए, लेकिन दोबारा हुए विस्फोट के कारण उन्हें ले जाने के प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार होने के बाद तलाश अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। एजेंसी द्वारा जारी एक वीडियो में बचाव कर्मियों को एक घायल पर्वतारोही को स्ट्रेचर पर पहाड़ से बाहर निकालते हुए और अस्पताल ले जाने के लिए इंतजार कर रही एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखाया गया है। इससे पहले माउंट मरापी में रविवार को विस्फोट हुआ था, जिससे आसमान में राख की मोटी परत छा गई और राख के बादल कई किलोमीटर तक फैल गए। भारतीय अमेरिकी राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल समेत 3 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और रोजगार आधारित वीजा के लिए देशों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय विधेयक पेश किया है। यदि ये विधेयक कानून में तब्दील हो जाता है तो इससे उन हजारों भारतीय अमेरिकियों को मदद मिलेगी जो ग्रीन कार्ड या अमेरिका में स्थायी निवास के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति और जयपाल के साथ सांसद रिच मैकार्मिक ने सोमवार को ये विधेयक पेश किया। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि द्विदलीय आव्रजन वीजा दक्षता एवं सुरक्षा अधिनियम 2023 HR 6542 अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और ग्रीन कार्ड के लंबित आवेदनों की संख्या को कम करते हुए देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। इससे अमेरिकी नियोक्ता जन्मस्थान के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर प्रवासियों को रोजगार दे सकेंगे। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए लैंगिक आधार पर उत्तरदायी जलवायु नीतियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला। रविवार को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में समुदायों को सशक्त बनाना, जलवायु लचीलेपन के केंद्र में महिलाएं विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए क्लिंटन ने कहा कि मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अत्यधिक गर्मी आजीविका, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने के लिए एक शक्तिशाली व तेजी से बढ़ने वाला खतरा है और इसके प्रभाव महिलाओं के लिए बेहद हानिकारक हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।